आत्मचिंतन या अपने कल्याण के बारे में सोचना वगैरह हमें सेल्फ सेंटर्ड बनाता है, ऐसा महसूस होता है। फिर गृहस्थी या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाई जाए, यानी धर्म और कर्तव्य हमें साथ साथ पालने हों तो क्या प्राइमरी है और क्यों प्रायोरिटी होना चाहिए था। खैर, प्राइमरी क्या प्रथम है यह सब? देखो भैया, हम लोगों के जिम्मे एक ही दायित्व नहीं है, हर व्यक्ति के जिम्मे कम से कम चार दायित्व तो हैं, एक गृहस्थ की अपेक्षा से कह रहा हूं। मुनि महाराज का दायित्व इतना ही है कि आत्म कल्याण के साथ लोक कल्याण की भावना रखें, ये मुनि महाराज का है। लेकिन गृहस्थ के लिए तो पहला दायित्व है कि वो अपनी गृहस्थी को व्यवस्थित ढंग से चलाए, परिवारजनों को सुरक्षा दे, प्यार दे, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उनके कल्याण में सहयोगी बने, ये उसकी पहली जिम्मेदारी। उसके बाद वो जिस समाज में रहता है, जिस समाज की वजह से उसे सुरक्षा मिली है, जिस समाज से जुड़ करके और वो अपनी एग्जिस्टेंस फील करता है, उस समाज के प्रति भी दायित्व है। जिस देश में वो रहता है उस देश के प्रति भी दायित्व है, और प्राणी मात्र के प्रति भी कोई दायित्व है, मेरे द्वारा किसी की भी क्षति ना हो ये भी दायित्व है। ये चार तो है ही उसके लिए, लेकिन इससे भी बड़ा दायित्व है अपने आत्मा के कल्याण करने का दायित्व। अब उसे इन पांचों को व्यवस्थित ढंग से चलाना है। अगर आप मुनि बन जाते तो आपके जिम्मे आत्म कल्याण और लोक कल्याण की भावना, ये दो चीजें ही रहती, लेकिन आपने गृहस्थी का मार्ग चुना है तो आपके जिम्मे पांच दायित्व हैं। कई बार ऐसा लगता है कि गृहस्थ का दायित्व बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल भी है। उस सारे प्रपंच के बीच रह करके भी अनाशक्त रहना और अपने आत्म कल्याण की भावना निरंतर बनाए रखना और बाकी दायित्व को पूरा करना, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग गृहस्थी करने के बाद भी अपने आत्म कल्याण की फिक्र करते हैं, बाकी दुनिया चाहे जहां जाए हमें क्या करना। तो बनाई का एक उथी गृहस्थी, करी का एक उथी, कहा किसने था? हाँ, ये विचार करने की बात है। अगर आपने गृहस्थी करी है तो आपका दायित्व अपने आत्म कल्याण के साथ साथ जो परिवार जन हैं उन सबकी को सुरक्षा देना, प्यार देना, उनके कल्याण की चिंता करना। मित्र की परिभाषा लिखी जैनाचार्यों ने, जो निरंतर कल्याण का विचार रखे वो मित्र है, जो हमारे कल्याण का निरंतर सोचता रहे, ऐसे कल्याण मित्र को पाना साता वेदनी कर्म के उदय से ही होता है। तत्वार्थ राजवार्तिक में अकलंग स्वामी लिखते हैं कि ऐसा कल्याण मित्र मिलना जीवन में बहुत दुर्लभ है। कोई पूर्व पुण्य का उदय होगा तब ऐसा कोई कल्याण मित्र मिलता जो हमेशा कल्याण कैसे हो इसकी चिंता करे। गृहस्थी में ये विचार आना चाहिए। अकेले संसार बढ़ाने का अर्थ नहीं है गृहस्थी करना, आत्म कल्याण भी उसका अर्थ है, और साथ में जो हमारे साथ जीव हैं, अभी तक तो एक ही की जिम्मेदारी थी, अब तो दो दो की जिम्मेदारी है, और दो भी ऐसे चलेंगे जैसे कि एक ही चल रहा हो, ये गृहस्थी का बहुत बड़ा दायित्व। जैसे वहां जिस गुरु के शिष्यत्व को अंगीकार किया जाता है तो फिर उसके चरणों में अपना मन भी डाल दिया जाता कि वो जैसा सोचेंगे वैसा ही मैं सोचूंगा, वो जैसा देखेंगे वैसा ही मैं देखूंगा, जैसा सुनेंगे वैसा ही मैं सुनूंगा, ऐसा। तो वहां जैसे हम फुली डिवोट होते हैं अपने गुरु के प्रति मोक्ष मार्ग में, इसी तरह एक दूसरे के प्रति गृहस्थ में भी डिवोट होकर के और चला जाता है, तब वहां भी आत्म कल्याण और पर कल्याण दोनों ही हैं। इसलिए आप इस दायित्व को कम नहीं माने। अब रही बात प्रायोरिटी की, तो गृहस्थ के लिए तो अपनी गृहस्थी को सबसे पहले देखना पड़ेगा, और उसकी गृहस्थी में ही उसका कल्याण निहित है। अगर वो अपने परिवारजनों के कल्याण की चिंता करता है तो मानिएगा कि वो अपना ही कल्याण कर रहा है। क्योंकि जब जब भी हम आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है हमारे कि देखो जब भी किसान कामना करता है भावना करता है कहे कि पानी बरसे तो क्या ऐसी भावना करता कि सिर्फ मेरे खेत में बरसे नहीं पानी बरसे सब दूर बरसेगा पानी लेकिन फसल किसकी काटेगा वो सबके खेत की अपने खेत भैया जब हम प्राणी मात्र के कल्याण का विचार करते हैं तब भी आत्मा का ही कल्याण होता है और जब हम आत्म कल्याण का विचार करते हैं तब भी प्राणी मात्र का कल्याण हुए बिना नहीं रहता ऑटोमेटिकली हो जाता हम नहीं भी चाहें तब भी हो जाएगा क्यों हम अपना कल्याण करना चाहेंगे तो दूसरे का कल्याण कर ही नहीं सकते क्योंकि दूसरे के अकल्याण का विचार करेंगे तो अपना तो अकल्याण पहले हो जाएगा दूसरे से गंदा बोलने का मन बनाएंगे तो अपना मन तो पहले गंदा करना पड़ेगा तब ना दूसरे से गंदा बोलोगे पहले नंबर यहां से शुरू होगा तो दोनों चीजें बिल्कुल साइमल्टेनियस होने वाली चीजें हैं इसलिए इसको प्रायोरिटी बेस्ड तो नहीं बना सकते कि किसको प्रायोरिटी देंगे आप जिसको भी प्रायोरिटी देंगे अल्टीमेटली वो सारी चीजें उसमें एक साथ ही जुड़ करके आ जाएंगी आप किसी को भी दें आप मंदिर में बैठे हुए हैं तब भी मानिएगा कि आप गृहस्थी का दायित्व पूरा कर रहे हैं ये ध्यान रखना और गृहस्थी में अपने परिवारजनों के कल्याण का विचार कर रहे हैं तब भी आप मानिएगा कि आप अपना ही कल्याण कर रहे हैं हर स्थिति में ऐसा सोच करके करना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा भाव सागर की शुरुआत कैसे हुई ये तो मुझे भी नहीं मालूम पर बताते हैं कि हमेशा से ऐसे ही है अब क्या करें हमेशा से ऐसा ही है हम बहुत पुराने लोगों से पूछा दो दो साल पुराने लोगों से पूछा वहाँ पर वो कहते हमारे से पहले से चला आ रहा जिसको पूछो वो कहता बहुत पहले से चला आ रहा आप बताइए किससे पूछें अपन कि कब से चला आ रहा इसीलिए हमने संसार चक्र कहा है संसार चक्र या कि भाव सागर समुद्र की थाह पाना आसान नहीं है असीम ही कहलाता है समुद्र भले उसकी सीमाएं हो पर वो भी असीम कहलाता है उदाहरण है इसलिए सागर का या कि चक्र का एक फेरी फेरी पर या कि एक वर्तुल पर एक सर्कल पर कहां से शुरू करें एंड लेफ्ट बिगनिंग लेफ्ट कहीं से शुरू कर लीजिएगा कहीं समाप्त नहीं है हमेशा चलता ही रहता है ठीक इसी तरह से संसार चक्र भी है एक विशेष सर्कल जिसको अपन कहते हैं एक निरंतर चलने वाला चक्र है जहां कहीं भी बिगनिंग नहीं है कहीं भी कोई एंड नहीं है हाँ उस संसार से पार हो जाएं या उसके सेंटर पर पहुंच जाएं तो फिर हम पेरिफेरी से बच गए केंद्र पर पहुंच जावे मोक्ष केंद्र है और संसार तो उसकी पेरिफेरी है भटकने के लिए ये संसार है और आत्मस्थ होने के लिए मोक्ष है इसलिए बिना भाव सब आत्माएं शून्य या मोक्ष में थी तो भाव सागर में ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठेगा क्योंकि सोल्यूशन मिल गया ये बहुत सारे प्रश्न जिन्होंने 10 क्वेश्चन लिखे थे उनके जवाब दे रहा हूँ बहुत हिम्मत करके दिगंबर साधु को आहार देने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अब बताओ आप श्रावक के 3 नियम हैं श्रावक को उन 3 नियमों का पालन करना चाहिए और जब भी हम किसी भी त्यागी व्रति को साधु को आहार दें तो हमारे भीतर उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए भिक्षा करुणापूर्वक नहीं दी जाती साधुजनों को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक दी जाती मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए और दाता के 7 गुण होते हैं वे 7 गुण भी उसमें होना चाहिए आज इस बात का ध्यान बहुत कम लोग रख पाते हैं इसीलिए अपने यहाँ पर दान की प्रक्रिया होने पर भी आत्म संतोष या शांति नहीं मिलती विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा सद विशेषा यह जो आहार दान इत्यादि की प्रक्रिया है उसकी विधि जैसी कही गई है नौदा भक्ति पूर्वक आहार देना है तो नौदा भक्ति पूरी करें हम पूरे श्रद्धा के साथ करें द्रव्य कौन सा वाला पदार्थ देने से महाराज की साधना में वृद्धि होगी यह बात श्रावक जानता है इतना विवेक उसे रखना पड़ेगा कौन सा पदार्थ देने से उनके लिए तपस्या बढ़ेगी ऐसा नहीं कि उनकी तपस्या में और कमी आ जाए वे गाफिल हो जाएं या अस्वस्थ हो जाएं तो उनकी तपस्या में बाधा उत्पन्न हो जाए ऐसा नहीं देगा वो शुद्ध पदार्थ देगा प्रासुक द्रव्य देगा विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा देने वाले दाता के 7 गुण होंगे तो दान का फल बहुत मिलेगा और पात्र उत्तम मध्यम जघन्य 3 होंगे उत्तम पात्र मुनि महाराज हैं एलक शुल्लक और आरिका माता जी मध्यम पात्र हैं सामान्य जो सद्गृहस्थ हैं जो सम्यक दर्शन से युक्त हैं
वो सब जघन्य पात्र हैं। जैसे पात्र को दिया जाएगा वैसा ही उसका फल मिलेगा। इसलिए इतनी सब बातों का ध्यान रख करके अपन लोग आहार दान की प्रक्रिया को बहुत सामान्य सा समझते हैं, लेकिन आप समझिएगा कि ये प्रक्रिया बहुत कर्म निर्जरा और पुण्य के संचय की प्रक्रिया है, यदि हम ठीक ठीक उसको हैंडल करते हैं। सबसे पहले लिखा है कि श्रद्धा होना चाहिए दाता के अंदर, फिर दूसरे नंबर भक्ति। श्रद्धा और भक्ति में अंतर क्या है भैया? भक्ति वो है जिसमें, श्रद्धा तो वो है जिसमें हम उनको अपने घर में बुला लेते हैं कि बहु स्वामिन अत्र अत्र, वहाँ कहाँ जा रहे हैं, मैं तो यहाँ बुला रहा हूँ। हाँ, और जैसे ही आने लगते हैं तो अरे ठहरिए ठहरिएगा, आ ही गए अब, मन शुद्धि वचन शुद्धि बोलकर भीतर ले जाता और उनको अटेंड करता है। ऐसा नहीं कि आप आओ भोजन करना, हम आ रहे हैं अभी घूम करके, ऐसा नहीं। भक्ति क्या है? उनको अटेंड करना और उनको अपने स्थान तक भेजने जाना, वापिस जहाँ से वो आए हैं वहां तक, उतने समय तक अटेंड करना, ये भक्ति है। फिर विवेक, क्या देना क्या नहीं देना, किसके बाद देना, कब देना। अभी अभी तो पानी दिया है, रस लिए खड़े हो गए, ना अभी रस नहीं भाई, अभी ठहरो, पानी तो दिया हूं। नहीं, मैं तो जो लाया हूं वो ही देऊं, चाहे जब देऊं। ले ओ महाराज, अब बताओ कैसे करेंगे आप? ये विवेक तो होना चाहिए,
स्तावक का है। देखो भैया, आपको बताऊं, आहार की प्रक्रिया मुनि महाराज की तो ऐसी है जैसे कि एक छोटे से नहीं बोलने वाले बेटे को माँ भोजन कराती है, ठीक ऐसी ही है। नहीं बोलते, चुपचाप, ज्यादा होता है तो हाथ बंद कर लेते हैं, और नहीं दोगे ठीक से तो मांगते तक नहीं है कि ये चाहिए कि वो चाहिए कि ये लाओ। इस तरह सावधानी, विवेक नाम का तीसरा गुण है दाता का। फिर कहते अमात्सर्य, दूसरे दाता से ईर्ष्या नहीं करना उन क्षणों में जबकि आहार दे रहे हैं। आओ आओ सब आओ, हमारे घर महाराज आए हैं, आप सब पधारो। हम वैसे करोड़ों रुपए देकर के आपको बुलाते तो ना आते, हमारे घर महाराज आए, इसलिए आप सब अपने आप बिना बुलाए आ रहे हैं। आओ आओ, आप भी हमारे घर आओ, हमें भी जब आपके घर में महाराज जाएंगे तो हमें भी अवसर मिलेगा, हम भी आएंगे। आप ये प्रेम बढ़ना चाहिए, ईर्ष्या नहीं बढ़नी चाहिए। गुणशु प्रमोदम, अरे वाह, इन्होंने तो जे हो देखो अभी अभी तैयार किया, इनकी कैसी भावना थी, इनकी इतनी भावना थी, मेरे यहाँ नहीं हुआ कोई बात नहीं, थोड़ा दुख तो है लेकिन देखो तो इनके यहाँ पर हो गया, अरे वाह इनकी भावना बहुत उत्कृष्ट थी, मैं भी कल ऐसी उत्कृष्ट भावना करूंगी। अरे काय की भावना थी, महाराज से पहचान हती सो उनके पहले चले गए। ऐसा तो जल्दी सोच लेते हैं, संक्लेश का चौका तो जल्दी लग जाता, विशुद्धि का चौका लगाना बहुत कठिन है। अमात्सर्य होना चाहिए, दाता का चौथा गुण है इस बात का। एक आहार देने वाले को मुझे एक ग्रास मिल गया, मेरा सौभाग्य, अगर हाथ बंद कर लेते नहीं लेते तो क्या कर लेता, लेकिन कहने में क्या आता, ये कहीं तो मिलो है, उनसे तो पांच पांच दस दस ले ले, हमसे ये कही बड़ी पार्शियलिटी है, हमने तो सोचा था यहाँ पक्षपात नहीं होगा, लेकिन यहाँ भी धर्म के क्षेत्र में भी बड़ा पक्षपात, हम तो कल से यहाँ ही नहीं। ऐसा विचार आ जाता खट से, आना क्या चाहिए कि देखो इनका कितना सौभाग्य है, हमारा भी है कि हमें कम से कम देने तो मिला। ऐसी अमात्सरी भावना और संतोष, मुझे कुछ नहीं चाहिए है। धन्य कुमार के चरित्र पढ़ो, उसमें पूर्व जीवन में क्या किया था, अकृत पुण्य था वो, उसका नाम मुनि महाराज जब तक नहीं आए थे तो क्या कहता था, जल्दी आ जाते, थोड़ा बहुत उनको दे देते, फिर पूरी खीर हम खाते। हाँ, 11 साल का बड़ी मुश्किल में तो माँ ने खीर बनाई, गरीब था वो, तो माँ कह के गई थी कि महाराज निकले तो रोक लेना, जब वो खा लेंगे तब मिलेगी। अच्छी बात है, उसके मन में कोई श्रद्धा ही नहीं थी, महाराज निकले तो पैर पकड़ लिए, आप जाना मत, क्यों, माँ आती होगी पानी भर करके, और आप नहीं खाओगे तो हम कैसे पाएंगे, इसलिए रुको, आप रोक लिया, माँ आई उतने में सिर पर घर करस लिए हुए, पड़गा लिया, आहार शुरू हुआ। जैसे जैसे देता जाता था वैसे वैसे मन में भाव आता था, मैं तो तृप्त हो गया, अब मुझे नहीं खाना, महाराज पूरा ले ले। महाराज को अक्षीण महानस नाम की रिद्धि थी, जिस पात्र में से जो वस्तु दे दी जाएगी वो चक्रवर्ती का कटक आकर के अक्षौणी सेना खा ले तो खत्म नहीं होने, अनगिनत लोग। और इनके मन में ये आता जाता था कि महाराज पूरी ले ले, मैं पूरी ले ले, मैं मुझे इसके फलस्वरूप कोई कुछ नहीं चाहिए, कोई सांसारिक आकांक्षा नहीं है, कोई परमार्थ माने आगे के भाव में मुझे कोई आकांक्षा नहीं, संतोष है, देने में ही संतोष। और फिर कहते अलुब्धता, दाता का एक गुण है अलुब्धता। अलुब्धता के मायने क्या है, इतनी चीज बनाई है महाराज ले ले, अरे महाराज लेते ही चले जा रहे हैं, हमने तो सोचा था थोड़ा सा लेंगे, हमने तो पूरे ही ले लिया। ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, इसी को बोलते आधा आता नहीं है, लेकिन रखा तो आचार्यों ने लिख करके कि आ जाए कदाचित कर्म के उदय से, तो अलुब्धता। और फिर कहते क्षमा, सब जीवों से उन क्षणों में क्षमा भाव धारण करता, ऐसे दाता के सात गुण हैं। इस तरह इन गुणों से युक्त व्यक्ति हो तो ही आहार ध्यान और क्या सावधानी रखना भैया, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि बोलते हैं अपन, तो अपने अंदर झांक करके भी देखना चाहिए कि इस समय मेरी मन शुद्धि मतलब क्या, अच्छे विचार हैं, यही मन शुद्धि है, किसी के बारे में खोटे विचार नहीं है, इतना ही तो मन शुद्धि, और कहां से शुद्धि करेंगे। आर ध्यान रोध ध्यान नहीं है, यही मन शुद्धि वचन शुद्धि, किसी से अनर्गल वचन नहीं बोलेंगे, किसी को जोर से ऊंचे स्वरों में नहीं कहेंगे निकल जाओ तू हट क्या कर रहा, ऐसी भाषा हाँ कठोर वचन नहीं बोलेंगे, यही वचन शुद्धि। शरीर से नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके और आहार के लिए गदगद हो करके खड़े हुए हैं, इतनी बातें सावधानी रखनी चाहिए भाई। सावधानी इसलिए रखनी चाहिए ताकि अपन को ज्यादा लाभ हो, क्रिया तो अपन कर रहे हैं लेकिन अगर सावधानी और श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो लाभ ज्यादा होगा, नहीं तो घाटे का सौदा है, मेहनत तृप्ति करी और सार कछू नहीं निकलो। इस अपेक्षा से जो है जितना अधिक सावधानी रखेंगे, क्या अपंग व्यक्ति भी दिगंबर साधु को आहार दे सकता है, यदि नहीं तो क्यों, जबकि मनुष्य परमात्मा की श्रेष्ठ कृति है। अपंग में भी देखना पड़ेगा कि क्या वो अपने बल पर खड़ा हो सकता है, यह बात पहले देखनी पड़ेगी। अगर अपना काम अपने हाथ से, आचार्य महाराज का कहना कि जो व्यक्ति अपना काम अपने हाथ से कर सके, हाथ पैरों में थोड़ी बहुत उसके कोई कमी है लेकिन अपना काम अपने हाथ से बिना बैशाखी के बिना किसी सहाय के अपना काम अपने हाथ से कर लेता है, आंख से ठीक ठीक दिखाई पड़ता है, मुंह से स्पष्ट उच्चारण कर सकता है, थोड़ी बहुत जबान लड़खड़ाती है मन शुद्धि बोलने में, तो उतनी वो नहीं है। और हो सकता किसी को कोई इस तरह की हो गई हो चीज जिससे थोड़ी बहुत डिफेक्ट आ गया हो, तो उसके लिए क्षम भी है लेकिन अधिक मात्रा में, जैसे अब हाथ ही नहीं है, इतना हाथ ही नहीं है तो फिर कैसे देंगे आहार दान, तब फिर उस समय क्या करना, तब भी दे सकते हैं कैसे, भावना भा रहे हैं आप सब देव आप सब देव, हम तो इसी में संतुष्ट हैं, प्रेरित करना आप देव क्यों नहीं देते हैं, आप आपको देना चाहिए, मैं तो देने लायक नहीं रहा, मैंने कोई पूर्व जीवन में कोई दुख नहीं है, मैंने कुछ ऐसा करा होगा इसलिए मुझे आज ये तकलीफ है, पर आप देव सब ऐसी कारित भी है और अनुमोदना भी है। तो भैया अपंग व्यक्ति अगर अपने में असमर्थ है अपना काम करने में, वही उसका अपंग बना कहलाएगा, उसके लिए भी आचार्यों ने कृपा करके रखा है कि तुम खुद नहीं दे पा रहे तो दूसरे को प्रेरणा दो, प्रेरणा भी नहीं दे पा रहे तो हाथ जोड़ के खड़े रहो और देखो पूरा लाभ मिलेगा, देने वाले से भी ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि नहीं देने वाला विचार कर रहा है कि देखो ये सब कितने सौभाग्यशाली हैं और देने वाला देखा मेरा सौभाग्य मैं दे रहा हूं, ऐसे अहंकार से भर करके कहो अपना अहित कर ले वे। इसलिए तीनों के लिए है, अपंग व्यक्ति को भी। एक व्यक्ति यहीं पर आए थे मेरे से पूछने तो मैंने उनको बोल दिया था कि मैं तो ले लूंगा, सभी महाराजों का जिम्मा नहीं ले रहा हूं मैं, हाँ क्योंकि आचार्य महाराज ने तो हमारे लिए बोल दिया कि देख लेना अपना काम अपने हाथ से। अब थोड़े से पैर में एक बेटा था वहां पनागर में, खूब आहार देता था वो, और एक दिन स्कूटर से जा रहा था जबलपुर, इधर उसको टक्कर लगी स्कूटर में, इधर लगी तो दोनों उंगलियां ये गई एक झटके में निकल गई, अब उसकी इतनी इतनी सी दो बची, फिर ठीक हो गई वो जुड़ गई, मैंने जुड़ी तो नहीं पर क्या बोलते हैं उसको, ठीक हो गई उस पर खाल, अब इतनी 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 टूट गई, अब बेचारे को जीवन भर के लिए आपने आहार दान से वंचित कर दिया। आचार्य जी कहने लगे नहीं, आप चम्मच से पकड़ करके, दो उंगलियां नहीं है बाकी तो तीन है, चम्मच अच्छे से पकड़ता था आहार देता था, नहीं तो जीवन भर 18 साल का है जीवन भर को, हाँ अगर हाथ ही नहीं रहता तो बात अलग, फिर बाएं से नहीं देंगे, अगर हाथ नहीं है ये भी नहीं है अगर तो भी नहीं देंगे, कोई दोनों में से, इसको बोलते अंग भंग हो जाना उसको अपंग, और अगर ये उपांग है ये उपांग कहलाते ये अंग कहलाता है, तो इसमें से कोई, या कि किसी के एक रोशनी एक आंख में रोशनी कम है या रोशनी चली गई पर एक आंख में रोशनी पूरी है, तो
देगा, शोधन कर लेगा। इस तरह से भैया आचार्य महाराज ने हम लोगों को ऐसी आज्ञा दी है, बाकी इससे ज्यादा अगर कोई स्थिति बन जाए तो फिर हमें कारित और अनुमोदना ही करना चाहिए। झूठा चालाक चापलूस व्यक्तियां ऊंचाइयां जल्दी तो वो पैर निकाल करके और उससे खड़े नहीं हो सकते ना, इसलिए अगर वो अपने बल पर खड़े होने की क्षमता रखते तो बात अलग थी। हमने पहले ही कह दिया कि अगर बिना बैसाखी के बिना किसी पैर लगाए आर्टिफिशियल हाँ खुद अपन खड़े हो सकें तो ठीक, नहीं तो हाथ जोड़ के अनुमोदना करो ना, उसमें तो और बढ़िया। क्लियर हो गया, यही क्लियर करना है। ठीक, झूठा चालाक चापलूस व्यक्ति ऊंचाइयां जल्दी छीन लेता। कौन सी वाली ऊंचाइयां? भौतिक। अरे उसमें क्या रखा, शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, कौन सी बड़ी बात है? आपने अगर कोई भौतिक सुख सुविधाएं खोज ली हैं, उनमें ऊंचाई पाली है, तो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। जो अपन देख रहे हैं आज लोग जो है बहुत सारी सांसारिक चीजें पा लेते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं पा लेते, तो अपन सोचते हैं इनने उतनी ऊंचाई पाली, ऊंचाई उन्होंने नहीं पाई। ऊंचाई तो वास्तव में वे पाते हैं जो अपने आत्मा के गुणों में समृद्ध है, ऊंचाई वास्तव में उनकी है, इसलिए इसको ऊंचाई मत मानना भैया। झूठा चालाक व्यक्ति आत्मा में ऊंचा कैसे हो सकता है, वो अपने कर्मों से ही नीचा है, इसलिए वो नीचा हो गया, आत्मा में भी नीचा हो गया। जो अपने कर्मों से ऊंचा है वास्तव में वो ऊंचा है, इसलिए इसको तो भौतिक ऊंचाइयां तो कोई भी पा सकता है। हमारे मंदिर में बहनों के लिए प्रक्षाल करने की अनुमति क्यों नहीं है, जबकि बहनें पुरुष को जन्म देती हैं और उनसे ज्यादा लोगों से ज्यादा धार्मिक होती हैं बहनें। हाँ आपका कहना तो ठीक है, तो कहीं कहीं पर तो परमिशन है, दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां माँ लोग भी करती हैं अभिषेक, वहां करती, जहां की जैसी परंपरा है भैया वहां पर वैसा करना चाहिए और झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों करते हैं वो, क्यों नहीं करते हैं? अभी एक आए थे वो डीसी जैन साहब, तो वो भी बड़ी बढ़िया बात कह रहे थे, कह रहे हम बोले पूजा करने जाते हैं तो सबको हमारे पूजा में इंटरेस्ट है। वो कहेंगे आज आपने धोती ऐसी क्यों पहनी, आज आप ऐसी क्यों चढ़ा रहे थे, आज आपने जहां द्रव चढ़ना थी उसको यहां रख लिया, उसको ऐसे कर लिया। बोले सब यही देखते रहते हैं, भगवान में कितना मन लगा ये किसी ने नहीं देखा। वो कहते कि हम तो ये कहते लोगों से कि तुम्हें सीधे खड़े होकर करने, सीधे खड़े उल्टे होकर करने तो उल्टे कर, पूजा करो मगर झगड़ा मैंने पढ़ो, तुम्हें जैसे करना हो वैसे करो। इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है, अपना भावों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं, इसी में उलझे हुए हैं। तो जिसको जिस तरह से अच्छा लगता है भैया, आपको अगर मन है तो दक्षिण भारत में जाकर के करके आ जाओ। यहां स्वामी ने लिखा कि अगर आप बहुत तीव्र तपस्या करेंगे, अपनी क्षमता से ज्यादा तपस्या करेंगे, तो क्या होगा, प्राणों का वियोग हो जाएगा, और प्राणों का वियोग होने पर आप अपने अच्छे परिणामों से कहां जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। वहां पर क्या है सिवाय असंयम के और कुछ भी नहीं है। यहां तो कम से कम थोड़ी सी ढील दे करके और संयम का पालन कर लेते तो धीरे धीरे करके आत्म कल्याण हो जाता। इसलिए दोनों मार्ग रखे हैं, एक कठोर चर्या भी रखी है और एक मृदु चर्या भी रखी, एक को जिन कल्पी कहते हैं, एक को स्थविर कल्पी कहते हैं। जैनाचार्यों ने ऐसी व्यवस्था बनाई, वर्तमान में जिन कल्प देखने में नहीं आता, स्थविर कल्प ही है, मृदुचर्या है, उतनी तीव्र तपस्या नहीं है कि एक बार बैठ गए चतुर्मास स्थापित करके और भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के दिनांक खोली। बताइए आषाढ़ की चतुर्दशी को बैठ गए हैं, आने वाली है, और उठेंगे कब, कार्तिकी अमावस्या के दिन, साढ़े तीन माह बैठ ध्यान में लीन हो गए। ऐसी उत्कृष्ट तपश्चर्या, वन में रह करके तपश्चरण कौन कर सकता है, वैसा सहनन चाहिए, वज्र वृषभ नाराज सहनन, तब जाकर के वो तपस्या हो सकती। तो आज तो हमें जब भी किस हद तक समझौता करना जिससे हमारी बुनियाद ना टूटे, जिससे हमारा जीवन क्षति को प्राप्त ना हो, वहां तक हम समझौता करेंगे और दूसरे की भी क्षति ना हो, ये भी ध्यान रखें दोनों। खराब समय आए उस समय धर्म भी अच्छा ना लगे, संभव है, समता भाव भी ना रख पाए, तो फिर क्या करना चाहिए, शांत होकर के देखना चाहिए। जैसे कि बाढ़ में फंस गए हैं तो क्या करना चाहिए, हाथ पैर चलाना चाहिए, कहते ना ही छोड़ दो, कोई एफर्ट नहीं करो, बहाव में अपने को बहने दो, लेकिन सावधान रहो, जहां भी कोई पेड़ की टहनी या कोई छोटा सा पकड़ने का स्थान दिखे वहां फौरन लपक करके पकड़ लो और बचा लो अपने जीवन को। ठीक ऐसा ही जब कर्मों का फ्लड आता है, जब भीतर कर्मों का बहुत तीव्र प्रवाह आता है, कुछ नहीं सूझता, ना धर्म सूझता है, ना कर्म सूझता, कुछ नहीं सूझता है, तब फिर क्या करना, उस भाव में शांति से, सजग भाव से कि देखो मेरे कैसे कर्म का उदय है, कल तक जो धर्म अच्छा लगता था आज वो मिथ्या मालूम पड़ता है, बहुत तीव्र कर्म का उदय है, अब मुझे कोई डिसीजन नहीं लेना जीवन का, शांति से इस कर्मों के बहाव को निकल जाने दो, जैसे ही ये थोड़ा सा शांत होगा मैं फौरन अपना काम शुरू करूंगा। अपन लोग उसी समय अपना पेशेंस खो देते हैं जिन क्षणों में हमारे कर्मों का तीव्र उदय आता है, इसलिए जब अपने सुख के दिन हैं अपने धैर्य का अभ्यास कर लेना चाहिए। हाँ, नहीं तो दुख में धैर्य खो जाता है। कहते हैं आचार्य महाराज कि दुख पूर्वक जिसने विद्या हासिल की है वो सुख में भी नहीं गायब होती, लेकिन सुख पूर्वक जिसने विद्या हासिल की वो दुख आने पर गायब हो जाती है। इसलिए हमेशा जो है जब विपत्तियां आए उसके पहले अच्छी स्थिति में अपने अंदर इतनी सामर्थ्य, इतनी रेजिस्टेंस क्रिएट करके रखनी चाहिए। लेकिन अपन बेसुध हो जाते हैं, सुख में भी बेसुध हो जाते हैं, भैया दुख में तो होते ही हैं, सुख में भी बेसुध हो जाते हैं, जब साफ अपने मन का चलता है तब भी अपन बेसुध ही हैं एक तरह से। तो दोनों स्थितियों में ऐसे जीता जा सकता। क्या कोई ऐसा सूत्र है जो हमें पूरे दिन धार्मिक बनाए रखे? मेरे तो अनुभव से यही आया कि सुबह से शाम तक मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाना है। एक क्षण पहले जैसा जीता था अगले क्षण उससे अच्छे ढंग से जीऊंगा। एक क्षण पहले मेरे मन में गुस्सा था अगले क्षण नहीं होना चाहिए। एक क्षण पहले मेरे मन में झूठ था अब नहीं होना चाहिए। जो जो बुराइयां एक क्षण पहले मेरे में है अगले क्षण भी ना हो, ये हमेशा अगर ध्यान में बना रहे तो पूरा दिन धर्म पूर्वक निकल सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सामने वाले व्यक्ति से कड़ी बात कह दी, अरे अब अगले क्षण मैं कड़ी बात नहीं कहूंगा, हो गया धर्म, इतना ध्यान आ गया। भले ही फिर से कड़ी बात मुंह से निकल जाए, फिर अगले क्षण विचार, अरे ये क्या हुआ, मैंने तो सोचा था कि मैं कड़ी बात नहीं बोलूंगा, ये तो मैंने बहुत कठोर वचन बोल दिए, अब नहीं बोलूंगा। अब फिर ट्राई कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड अगेन एंड अगेन। हम निरंतर इस चीज के लिए प्रयत्नशील रहें कि अपने जीवन को मुझे प्रतिक्षण अच्छा बनाना, यही तो धर्ममय है भैया। यदि किसी भय सड़क दुर्घटना हो जाए और पुरुष की अनावश्यक परेशानियों से भय खाकर उसे अस्पताल नहीं पहुंचाते, जबकि ऐसा नहीं करने पर मन बड़ा दुखी होता है, क्या करें? ठीक यही चीज 1984 में जब जबलपुर में आचार्य महाराज के साथ चतुर्मास कर रहे थे तब सामने आई थी। दो लोग स्कूटर पर जा रहे हैं रात 10 बजे लॉर्डगंज के सामने की गली में से, एक व्यक्ति बेतहाशा दौड़ता आया है, दूसरा उसके पीछे दौड़ता आया है, 25 कदम की दूरी पर उसने उसको चाकू मारा है, खून निकलना शुरू हुआ बहना और वो वहीं गिर गया है, और ये यहां से स्कूटर पे जा रहे हैं। क्षण भर को तो सहम गए, फिर सोचा कि अभी अभी तो मार के भागा है, बचा सकता हूं, तो रोक ली गाड़ी। लेकिन पीछे वाले मित्र ने कहा कि सुनो मुझे भाग जाने दो, मेरी गृहस्थी मेरे साथ लगी हुई है, कहां कहां तक जाकर के मैं पुलिस को जवाब दूंगा कि मैंने नहीं मारा है, मुझे जाने दो। तो इसके मन में भी आ गया, जो मुझे सुना रहा है उसकी बात कह रहा हूं आपसे, उसके मन में भी आया कि मेरी भी तो गृहस्थी लगी, भैया अगर अपन अभी इनको बचाने लगेंगे तो कितनी जगह गवाही देते फिरेंगे अपन कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आई विटनेस। अब बोले मैं स्कूटर स्टार्ट करके और चले आया सवेरे सवेरे, रात भर तो नींद आई नहीं, सवेरे सवेरे पेपर में पढ़ा कि किसी ने किसी को लॉर्डगंज के सामने मारा और वो फर्स्ट एड के अभाव में मरण को प्राप्त हो गया। महाराज 8 दिन बाद वो मेरे से मिले थे, बोले महाराज जब जब भी खाना खाने बैठता हूं वही उसके चाकू लगा है, खून बह रहा है, वही सामने आ जाता और फिर चोट पहुंचती है कि मैं बचा सकता था, मैंने नहीं बचा। अब ऐसी स्थिति में क्या करें, अब क्या जवाब दें? भैया या तो जो है उसके कर्मों का दोष मान करके और चुप रह जाओ, या फिर अपने ही कर्मों की खोट मानो कि थोड़े से गृहस्थी के पीछे और एक जीवन चला गया, और हम तो सोच रहे थे कि हम कैसे कर पाएंगे, थोड़ी हिम्मत करके अगर हम साहस करके थोड़ी मुश्किल अपने जीवन में डाल लेते अपने जीवन को थोड़ी मुश्किल में डाल करके उसकी रक्षा कर पाते तो कम से कम ये दुख तो नहीं होता। ऐसा ही उपाय कर सकते हैं, इतना साहस करना चाहिए। अगर साहस नहीं हो सके तो फिर चुप रहो, फिर बाद में दुखी भी मत हो। अब क्या फायदा, अब दुखी होने से क्या। सहानुभूति तो देते हैं लेकिन मदद नहीं करते हैं, ये अपन की कमजोरी है, है? तो बहुत पहले उन्होंने मुझे सुनाया था, 1984 की बात है। मुझे बताएं कि जनसंख्या वृद्धि तो बहुत हो रही सबसे ज्यादा। हाँ, मतलब सबके मन में यही आता है कि एक तो मनुष्य बनना बहुत दुर्लभ है और इतने मनुष्य बढ़ते चले जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि दुर्लभ है, तो कैसे। और दूसरी बात ये लिख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जैन कुल या जैन धर्मावलंबी ही कम हो रहे हैं, क्या ये गलत नहीं है कि हमने एक जीव को उच्च कुल में आने से रोक दिया, क्या ये उचित है। जो व्यक्ति अपनी संतति को होने से पहले नष्ट कर देता है या नहीं होने देता है वह नरक आयु और नपुंसक वेद का बंध करता है, ये आचार्य भगवंतों की वाणी है। इससे ज्यादा मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। और ये ध्यान रखना कि आप यहां किसी को पालते पोसते नहीं हैं, अपना अपना पुण्य पाप लेके सब आते हैं। आप ये सोचो कि चार बेटे हो जाएंगे तो कौन पालेगा, चार बेटियां होंगी तो कौन पालेगा। आज इस तरह की प्रक्रिया शुरू हो गई, एक बेटा और एक बेटी, उस 12 साल से छोटे दो बच्चे, बस इसी का नाम फैमिली है। वास्तव में हमारे यहाँ तो फैमिली वो होती थी जिसमें कि बहन भी है, चाचा भी है, ताऊ भी है, और जितने संबंध हो सकते थे वो सब थे। और जितने संबंध होते हैं उतनी मृदुता होती संबंधों की वजह से, और अब आज वो सब खत्म होती चली जा रही। अब तो दो में ही आदमी को ऐसा लगने लगता है कि जैसे मेरे ऊपर बोझ बढ़ रहा है। ये कॉन्सेप्ट हमने पता नहीं कहाँ से एडॉप्ट कर लिया है, अपने हाथ से हमने अपना अहित कर लिया है। अगर देखा जाए तो जो इसमें लिखा है इन्होंने कि उच्च कुल में उसको जन्म देना था जिससे कि धर्म की परंपरा चलती, लेकिन हमने उसको रोक दिया। क्यों? क्योंकि हमारे सुख के साधन कम हो जाते ना, एम्यूजमेंट जितनी कम फैमिली होगी उतने ठाट से जिएंगे ऐसा लगता है, ज्यादा लोगों का तो बोझ हो जाएगा। ध्यान रखना, एक यहीं पर मैं अब आपको पता लग जाएगा इसलिए नहीं कह रहा हूं, एक फैमिली थी उसमें तीन बेटियां हो गई, मैंने वहां चतुर्मास भी करा। तीन बेटियां होने के बाद और चौथी बेटी होने को है, और उन्होंने बहुत कोशिश करी उसको एबॉर्शन करवाने की। तीन बार ऑपरेशन थिएटर से मां बेहोशी करने की दवाई सुंघा देने के बाद, एनास्थीसिया देने के बाद भी सब तोड़ करके वापस आ गई। दो बार तो ऐसे ही लौट आई, तीसरी बार तो एनास्थीसिया के बाद भी लौट के आ गई, जबकि सबका मन था कि जब डायग्नोज हो गया है कि बेटी ही आने वाली चौथी भी, तो एबॉर्शन करवा दे। और लेकिन वो सरवाइव कर गई। आप आश्चर्य करेंगे कि जिस दिन वो बेटी, मैंने उनको कहा कि आप नहीं पालेंगे चौथी बेटी, वो अपने आप पल जाएगी। और जिस दिन वो बेटी पैदा हुई इनके लिए, उस दिन अपने व्यापार में नेट 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैंने कहा सुनो, आज की तारीख में उसके नाम से FD कर दो, 20 साल की शादी लायक होगी, तब तक पर्याप्त पैसे हो जाएंगे शादी के लिए। आते ही साथ 1,00,000 रुपए का नेट बेनिफिट हुआ। ये मेरे आंखों देखी घटना है। इसलिए अपन लोग को लगता है जैसे कि हम पालते पोसते ना हो, जैसे कि हमारे जिम्मे सारी सृष्टि चल रही हो। अरे भाई, अपना पुण्य पाप लेकर के सब आते हैं, इसलिए कभी भी इसका समर्थन नहीं करना चाहिए कि हम आने वाली संतति को रोकने का उपाय करें या कि उसे किल करने का पैदा होने से पहले उपाय करें। पता नहीं फॉरवर्ड होने के चक्कर में हम कहां जाएंगे, भगवान जाने। मैंने तो अपनी बात कह दी, जरूरी नहीं है कि आप मेरे से सहमत हों। मैं 2-3 मामलों में बहुत बैकवर्ड माना जाता हूं। लोग वैसे तो मुझे सोचते हैं कि ये पढ़ा लिखा आदमी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इस मामले में बहुत बुद्धू हूं। 2 चीजों में, कि विवाह करना अपने आचार विचार और अपने धर्म में, अपनी परंपरा आगे बढ़ाने के लिए, और दूसरी चीज कभी भी इस प्रक्रिया को अप्लाई नहीं करना अपने ऊपर कि आने वाली संतान, या फिर आजीवन ब्रह्मचर्य ले लो जिससे कि संतान ही उत्पन्न ना हो। अगर आपने संतान उत्पत्ति का मार्ग रोक दिया है, इसके मायने आपने नपुंसक वेद का बंध, तो अगली बार आपको फिर संतान उत्पत्ति में बहुत मुश्किल होगी ही नहीं। लेकिन देखने में नहीं आता ना, इसलिए विश्वास नहीं होता, मत करो विश्वास। लेकिन जब जीवन में घटित होगा तब सबको मालूम पड़ेगा कि हाँ, इसलिए तो लिखा है कि पंचम काल में अधिकांश जीव नरक से आते हैं, नरक जाते हैं, नपुंसक वेद का उदय वहीं पर होता है। बहुत सावधानी की, मैं बहुत कम कहता हूं लेकिन आज आपने प्रश्न कर दिया, क्योंकि दुख भी लगने लगता है कि आपसे ऐसी बात कह रहा हूं, जबकि सब लोग इतने इतने अकस्टम टू हो गए हैं, इस चीज को इतना बढ़िया मान रहे हैं और बड़े छाट से कहते हैं कि हाँ बस एक 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 गुड़िया है, एक गुड़िया है और एक भैया है, बस बात खुशी से बताते हैं कि ऐसे हम तो। ये खुशी कितने दिन रहने वाली है भगवान जाने। सबने करा होगा मेरे ख्याल से, 90% लोग यही इसी प्रक्रिया को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन जैन दर्शन इसका समर्थन नहीं करते। मुझे इस गद्दी पे बैठ करके जैन दर्शन की बात कहनी है, बाकी आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो आपकी अपनी चॉइस है भाई, मैं कौन होता हूं कि आपकी उस चॉइस में बाधक बनूं, पर है तो जैसा वैसा ही कहूंगा। ये जो है तो एक ही राइटिंग के इतने सारे क्वेश्चंस और पेपर्स भी एक जैसे, अब बताइए हैं। पहले जो है ना छोटे छोटे क्वेश्चंस निवेदन है, कृपया ये बताने की कृपा करें कि सुबह जय जिनेंद्र बोलना चाहिए सो बोलते हैं, सुबह नित्य नियम करके मंदिर जाना चाहिए सो भी जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्राणी ये कहते हैं कि जिस घर में आप रहते हैं उस घर में भी सर्वप्रथम झाड़ू लगाकर घर में पानी से धोकर ही मंदिर जाना चाहिए, घर को पानी से धोकर ही मंदिर जाना चाहिए, और कुछ लोग ये कहते हैं कि सीधे ही मंदिर उठकर चले जाना चाहिए क्योंकि सुबह झाड़ू धोने पहुँचने में जीव हिंसा बहुत होती, क्या उचित है? अपने यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि संसार शुरू करने से पहले भगवान के दर्शन करना चाहिए, बस इतना ही लिखा हुआ। इससे पहले कि मैं संसार में प्रवेश करूं, संसार के कार्यों को शुरू करूं, इसके पहले मैं जरा देख तो लूं कि मेरा स्वभाव क्या है, फिर उसके बाद जरा भगवान के पास जाकर के उनके दर्शन करके वापस लौटते समय पीठ पर उनके हाथ तो रखवा लूं कि जा रहा हूं संसार में, भटक ना जाऊं, वापिस आना यहीं पर। पीठ नहीं देते भगवान को, निकलते समय कहते हैं कि जरा पीठ पर थपथपा तो दो, जा रहा हूं अब सामने संसार है, जब आपके पास आया था तो आप सामने थे, पीठ संसार की तरफ थी, अब आपकी तरफ पीठ नहीं कर रहा हूं पर संसार की तरफ मुख है, और पीठ तो इसलिए आपकी तरफ है कि आप जरा संभाले रहना इस संसार में। हाँ, इस संसार में जा रहा हूं, जूझूंगा मैं वहां पर, सिवाय पाप के और कुछ नहीं है, लेकिन आपको भूल नहीं जाऊं, यहां से शुरू होती है अगर वास्तव में देखा जाए तो दिनचर्या, और बाकी तो सिर्फ मान्यताएं हैं। सच्चाई और मान्यताओं में बहुत अंतर है, कई मान्यताएं ऐसी बन जाती हैं कि वो आपने लिखा ही है कि ऐसा ऐसा करते हैं, पर मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूं, इसलिए वास्तविकता तो आचार्यों ने यही लिखी है कि संसार शुरू करने से पहले और अपना स्नान करके, स्नान और ध्यान, फिर उसके बाद में बाकी काम। स्नान ध्यान कहते हैं ना कि स्नान करके मंदिर के दर्शन, फिर संसार के सारे काम शुरू करेंगे, पर अब आज के समय में तो ये सब बातें ही बातें हैं, कौन करता है, बैटरी चाहिए सबसे पहले है कि नहीं, वहीं पर पेपर के साथ लेटे लेटे टेलीविजन सामने है खुला हुआ और पेपर हाथ में है और चाय का प्याला, भगवान अगवान, फुर्सत मिलेगी तो देखेंगे दिन भर में, कहां फुर्सत है भगवान, आपको फुर्सत है भगवान, हमें कहां फुर्सत है। नहीं भैया ऐसा नहीं है, हैं अपने को इतना ध्यान रखना। क्या भाग्य का फल निश्चित है? यदि है तो फिर मंत्र तंत्र और यंत्र की क्या आवश्यकता है? अगर भाग्य निश्चित नहीं है तो फिर भविष्य के बारे में एकदम सटीक भविष्यवाणी क्यों कैसे कर पाते हैं? आपने दोनों चीजों को जोड़ दिया, पहले भाग्य और पुरुषार्थ समझ लें, फिर बाद में जो बाह्य निमित्त हैं उनमें मंत्र तंत्र ज्योतिष इत्यादि ये सब चीजें निमित्त हैं। अकेली लोगों का टाइम हो गया क्या जाने वालों का? लेकिन आपको हमारे पास से 6:30 के पहले निकल जाना है, फिर आप चाहे जहां रहो, ये बता दिए मैंने, 5 मिनट पहले आप हमारे पास से निकल जाए, जब तक हम प्रश्न पूरे कर दें। अच्छा ठीक, ये सारे प्रश्न जो है रह जाएंगे भैया, इतने सारे प्रश्न रह जाएंगे, मैं तो बहुत थोड़े से प्रश्न कर पाया, एक प्रश्न का जवाब दे रहा हूं कि भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ, और भाग्य किसे कहते हैं और पुरुषार्थ किसे कहते हैं? वर्तमान में किए जाने वाले कर्म को पुरुषार्थ कहते हैं और जो कर्म पहले किए जा चुके हैं वो सब भाग्य कहलाते हैं। किसी ने हमारे लिए भाग्य माथे पर लिखा हो ऐसी धारणा गलत है। अपना भाग स्वयं हम निर्मित करते हैं, एक क्षण पहले जो कर्म करते हैं वो भाग्य की तरह हमारे साथ अटैच हो जाता है, अगले क्षण जो कर्म करते हैं वो हमारा पुरुषार्थ है। और दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ये निर्णय इतना आसान नहीं है। क्या हुआ, एक बार भाग्यवादी और पुरुषार्थवादी दो लोग थे, ये तय करना था कि कौन बड़ा, भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ, मिलता कैसे, भाग्य से मिलता कि पुरुषार्थ से। तो दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया गया और कहा कि इस अंधेरे कमरे में कहीं पर एक लड्डू रखा हुआ है। जो पुरुषार्थवादी था उसने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, ढूंढना पड़ेगा। भाग्यवादी ने कहा कि सो आराम से मिलना होगा तो मिलेगा, वो सो गया। और दूसरे ने टटोल करके और ढूंढना शुरू किया और घंटे भर की मेहनत के बाद उसके हाथ में लड्डू आ गया। जोर से उसने कहा कि मैंने पुरुषार्थ से लड्डू पा लिया, और दरवाजा खोल करके बाहर निकल रहा था उतने भी उसको लगा कि है तो आखिर मेरा ही मित्र है, तो आखिर मेरे ही बेचारा सो रहा है, इसको कैसे मिलेगा। जगाया उसको, सुन मैंने पा लिया है लड्डू, लेकिन आधा तू भी ले ले। वो बाहर आता देखा, देखा मेरे भाग्य में आधा लड्डू था, मुझे भी प्राप्त। अब बताइएगा कि कौन जीता, भाग्य वाला जीता कि पुरुषार्थ वाला जीता, कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं। लेकिन लेकिन ये ध्यान रखें, इतना अवश्य जोड़ लें कि भाग्य भी हमारा है, और हम अपने भाग्य को अपने पुरुषार्थ से बदल सकते हैं। अच्छा अच्छा, शिव वरंबन मुस्तु, सब महाराजों को भी अच्छे दर्शन करके आओ, हैं हरि बढ़िया है। आशीर्वाद और आचार्य श्री को बारे में सबको और 10 दिन खबर दे
देना।
दोनों महाराजों के नमस्ते। अब आप लोगों का भाग्य कौन निर्धारित करेगा? ये अब ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ भी करेंगे और भाग्य भी। अच्छा है, वो हमारे हाथ में नहीं। क्या बात, अपनी हाँ निकालो बेटे इसमें से, हम दे देंगे। अरे वाह, तो अपन बात कर रहे थे कि भाग्य और पुरुषार्थ, भाग और पुरुषार्थ जो है वो दोनों में से, दोनों कभी कभी भाग्य प्रबल हो जाता है तो कितने भी पुरुषार्थ करते हैं कोई रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है, और कई बार थोड़ा सा पुरुषार्थ करने पर भी भाग्य फेवर में होता है तो बहुत सारी चीज हमें हासिल हो जाती। एक उदाहरण और है कि किसी के पास अपन ने अपने 100 रुपए रख दिए थे कि बाद में ले लेंगे, और एक दिन ऐसा आया कि अपन ने उसका 100 रुपए का काम और कर दिया, और जब लेने पहुंचे तो उसने कहा 200 लेके जाओ। अरे मैंने तो तुम्हारा 100 का ही काम किया, 100 का तो किया पर पहले तुम्हारे 100 तो मेरे पास पहले से रखे थे, वो भी ले लो। अब हम चकित कि काम तो 100 का किया और मिल गए 200। और किसी से अपन ने पहले 100 रुपए उधार लिए थे और फिर बाद में उसका 100 रुपए का काम करा, जब उससे मांगने गए तो उसने कहा अभी तो पुराना ही चुकता हुआ है, अभी हिसाब बराबर हुआ, अभी कुछ नहीं मिलने वाला। तो देखते हैं कि इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आया, और उसने तो जरा सा पुरुषार्थ किया और बहुत मिल गया। भैया इस तरह भाग्य हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमेशा इंटरकनेक्ट है। जैसे हम एक कदम आगे रखते हैं वो हमारा पुरुषार्थ है, अगला कदम उसी को फॉलो करता है वही हमारा भाग्य। या कि दूसरे ढंग से कह दें कि जो हम करते हैं वो हमारा पुरुषार्थ, और जो लोग हमारे बारे में विचार करते हैं वो हमारा भाग्य। हमने आपके साथ अच्छा किया, आपने रिटर्न में हमारे साथ अच्छा नहीं किया तो ये बुरा है हमारा भाग्य, लेकिन हमारा कर्म तो अच्छा है, कर्म तो हमने अच्छा ही किया लेकिन हमें रिटर्न में बुरा। ऐसे ये जुड़ी हुई चीज है, इसलिए इसको ऐसा माने, और अपने भाग्य को हम अपने पुरुषार्थ से बदल सकते हैं। जैन दर्शन यही सिखाता है कि कर्म का उदय आने पर शांत रह करके हम अपने उन कर्मों को नष्ट कर सकते हैं आसानी से। यही तो सारी फिलॉसफी है, नहीं तो फिर क्या, फिर तो हम भाग्य के भरोसे बैठ जाएं तो फिर तो संसार अनंत हो जाएगा हमारा, है ही वैसे भी, हम तो संसार से पार होने के लिए अपने पुरुषार्थ को महत्व देने वाले लोग हैं, लेकिन पुरुषार्थवादी नहीं है। हाँ, हम निराग्रही हैं, पुरुषार्थ और भाग्य दोनों का कॉम्बिनेशन मान के चलते हैं, ये ध्यान में रखें। न दैववादी है न पुरुषार्थवादी है, दोनों को। फिर आचार्य भगवंत के चरणों में बैठे समंतभद्र स्वामी के, वो पहले एक कारिका लिखते हैं पुरुषार्थवाद की, एक लिखते हैं दैववाद की, फिर दोनों का समन्वय करके लिखते हैं कि जहां तक बुद्धि पूर्वक हमसे बने वो हमारा पुरुषार्थ, और जिसमें हमारा कोई वश नहीं है वो हमारा भाग। जैसे कि हमने दाल चावल मिला करके अग्नि पर चढ़ा दिए हैं पतीली में, अब खिचड़ी बन रही है, मेरा पुरुषार्थ तो मैं जो कर सकता था, अब उसमें मैं हाथ भी डाल दूं तब भी 45 मिनट से पहले नहीं पकेगी वो, जितनी देर में पकनी उतनी देर में पकेगी वो। और अगर उस बीच में मुझे दूसरा कोई काम आ गया और मैं उधर चला गया तो हो सकता नीचे जल भी जाए और हो सकता बिल्ली आके पटक जाए, जरूरी नहीं है, मुझे जितनी मिलनी होगी उतनी मिलेगी, मेरा पुरुषार्थ मैंने पूरा करा है, लेकिन मेरे भाग्य में क्या है वो कौन निर्धारित करेगा, मेरे पूर्व कर्म उसको निर्धारित। इस तरह अपन समझना चाहे समझ सकते हैं। ये एक बच्चे ने पूछ लिया कि बच्चों का पढ़ाई में अपने ध्यान एकाग्र नहीं कर पाते हैं, इसका समाधान बताइए। तीन चीजें हैं बेटे, हमेशा ध्यान में रखें, जिस चीज को भी करना है, पढ़ाई करनी है, तो उसमें अपना इंटरेस्ट क्रिएट करें। सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट तो रहता है, लेकिन कहीं और दूसरी जगह भी हमारा इंटरेस्ट रहता है, इसलिए हमारा कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता। हमें एक घंटे पढ़ना है अगर, तो हम एक घंटे के लिए और पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और कंटिन्यू, आज एक घंटे पढ़ लिया कल नहीं पढ़ेंगे ऐसा नहीं, रोज के नियम में ये कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। सबसे पहले रुचि, फिर उसके बाद अभ्यास, और तीसरे नंबर पर विरक्ति। कंसंट्रेशन के लिए, हर एक काम के कंसंट्रेशन के लिए तीन चीजें तो बांध के रख लो, पूरे इंटरेस्ट से करना, कंटिन्यू करना अभ्यास करने से, और धीरे धीरे कंसंट्रेशन आता। और जितनी देर तक मुझे पढ़ना है उतनी देर टेलीविजन का त्याग, खेल कूद का त्याग, एक घंटे के लिए क्या दिक्कत है उसमें, बैठे हैं अपन, अब करना, ध्यान आ रहा है पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ध्यान आ रहा है टेलीविजन देख लेते, हाँ देखेंगे अभी, देखेंगे अभी तो एक घंटे तो होने दो पहले, फिर बाद में देखेंगे, अभी एक घंटे तो पढ़ूंगा, नहीं भी पढ़ने मन लग रहा है तब भी और कुछ नहीं करना, ये दूसरा इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं पढ़ने वालों को, नहीं मन लग रहा बैठो अपनी किताब खोल करके पूरी पलटो, नहीं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हाँ ठीक है पर हम उठेंगे नहीं हम यहां से, एक घंटे हमारा संकल्प है पढ़ने का, तो एक घंटे उठ के नहीं जाएंगे कहीं, ना टेलीविजन देखेंगे, ना कोई मैगजीन खींचेंगे, ना खेलने कूदने जाएंगे, क्यों, मन ही नहीं लगा, चलो खेले, एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करेंगे उन क्षणों में, वरना उन सब चीजों का इंपैक्ट भी तो हमारे ऊपर पड़ेगा, वो हमारा ज्ञान उस सब में एंगेज हो जाएगा, हमें वहां नहीं करना है, उसका इंप्रेशन हमारे ऊपर ना पड़े, इसलिए खाली बैठे भले ही पढ़ने में मन नहीं लग रहा। अब रही बात कंसंट्रेशन कैसे करें, तो हर एक का अपना आईक्यू होता है, मैं कहता हूं अपने आईक्यू को पहचाने, मैक्सिमम आईक्यू होता है, बस पांच मिनट में पूरी बात छोटे बच्चों की है, इसलिए आईक्यू अपना मैक्सिमम होता है 56 मिनट मैक्सिमम, 56 मिनट तक हम लगातार पढ़ते जाएं फीड हो जाता है अपने भीतर, बिल्कुल पूरे कंसंट्रेशन के साथ जो पूछना चाहो पूछ लेंगे, लेकिन इतना किसी का नहीं है आज, 20 मिनट है मैक्सिमम, अब इतनी ही क्षमता है कि 20 मिनट लगातार पढ़ें तो सारा याद रहता, उसके बाद तो सब ऐसा लगता कि सब भूल गए और आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे 20 मिनट, बहुत मुश्किल है कि 20 मिनट भी होता कि नहीं होता, तो फिर पेज पढ़ना शुरू किया, एक पेज पढ़ लिया बढ़िया समझ में आ रहा है, दूसरा पेज भी पढ़ लिया बढ़िया समझ में आ रहा, तीसरा पेज पढ़ा हाँ ठीक समझ में आ रहा सब, चौथे पेज में तो वो भी नहीं जो पढ़ रहे हैं वो भी नहीं आ रहा, और पुराना वाला थोड़ा याद किया है पुराना वो भी गायब, अरे सब मामला गड़बड़ हो गया। समझ लो कि आपका आईक्यू 3 पेज का है, इन 3 पेज को कह दो ए, अगले 3 पेज को बी, अगले 3 पेज को सी, बिफोर द क्लोजिंग बी रिकॉल ए, बिफोर द क्लोजिंग सी रिकॉल ए एंड बी, इतना टाइम लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन कंसंट्रेशन ऐसे ही बढ़ेगा। जब हमने 3 पेज पढ़े और पूरे याद हैं और चौथे पेज पढ़ने में गड़बड़ आ रही है बात, तो रुक जाओ ब्रेक। अब ब्रेक करके क्या करना, रिकॉल करना, पहला वाला पेज रिकॉल किया हाँ समझ में आ रहा है, दूसरे वाले पेज पर क्या क्या लिखा था, अरे वो बीच में और वो तो ध्यान ही, अच्छा ये था, फिर उसके बाद में फिर पढ़ना, फिर मनी मन रिकॉल कर रहे हैं, तीसरे में तो एक आध लाइन याद आ रही है, बाकी सब साफ हो गया, कोई बात नहीं एक बार फिर से देख लो, फिर से पूरा का पूरा पेज एक बार देख लिया, बस ठीक है रिकॉल हो गया। अब इसके बाद 5 मिनट और वेट करो, फिर नया 3 पेज फिर पढ़ना शुरू करो। इस तरह से आप आश्चर्य करेंगे कि अगर आपने 30 पेज पढ़े हैं तो पहला वाला पेज 10 बार आपने रिकॉल करके देख लिया है। वो क्लोज, हम लोग मेमोरी क्लोजिंग तो अच्छी करके जानते हैं लेकिन रिकॉल नहीं करते। मेमोरी क्लोजिंग में कंसंट्रेशन है, अच्छे से क्लोज करो, रिकॉल करो, फिर क्लोज करो, फिर रिकॉल करो। इस तरह से बच्चों को टाइम तो ज्यादा लगेगा शुरू में, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि 3 पेज पढ़े, हो सकता है पहली बार रिकॉल करने में और 30 मिनट लग जाए 3 पेज को, लेकिन अगली बार 15 मिनट, अगली बार 10 मिनट, अगली बार 5 मिनट, फिर तो 1 मिनट में आंख बंद करी 3 पेज सामने आ गए बिल्कुल। अब कोई कहीं से पूछ लेवे सब मालूम। ये ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है अवग्रह या अवाय धारणा। धारणा की शक्ति कैसे आएगी? अवग्रह या अवाय तो होता है लेकिन धारणा नहीं हो पाती। क्षयोपशम निरंतर विशुद्धि से बढ़ता है और जैसे जैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता विशुद्धि बढ़ती चली जाती। ये तो आंसर हमने थोड़ा कठिन सा दे दिया छोटे बच्चों के हिसाब से। बच्चों को क्या करना चाहिए? सामान्य रूप से 2-3 घंटे पढ़ने का नियम ले लेना चाहिए और अपनी कुर्सी टेबल से उठना नहीं चाहिए, किताब सामने रखना चाहिए, जितना मन लगे उतना पढ़ो, मन नहीं लगे तो किताब भले ही बंद करे रहो लेकिन वहां से उठना नहीं, पहली चीज ये। दूसरी ये कि एक बार में किसी को याद नहीं होता, ना हम अकलंग स्वामी है ना निकलंग स्वामी है, न एक पार्टी है ना दो पार्टी, 17 बार पढ़ना पड़ेगा तब। आचार्य महाराज कहते हैं कि एक ग्रंथ 108 ग्रंथ एक एक बार पढ़ने से बेटर है कि एक ग्रंथ 108 बार पढ़ो। तो दूसरा मेरा सलाह ये है कि बार बार उसका अभ्यास करो। याद नहीं होता, याद नहीं होता ऐसा रोना लेके मत बैठो, एक बार में किसको याद होता बाबा, किसी को नहीं होता। फिर से पढ़ो, फिर से, क्यों कैसे नहीं होगा याद, मेरा क्षयोपशम बढ़ेगा, मैं अभ्यास करूंगा तो क्षयोपशम रोज करूंगा, जो चीज कठिन है उसका तो बार बार अभ्यास करूंगा दिन में 17 बार। और फिर या तो ऐसा करो कि जो चीज याद नहीं होती, मान लो एक पेज में ये याद नहीं हो रहा तो उसके 4 पैराग्राफ बना लो छोटे छोटे, पूरा लेंथी मत। इसलिए अपने नोट्स बनाना भी जरूरी, अब तो सारा काम बने बनाए उधार खाते से होता है, उसमें अपने हाथ से लिख करके बनाओ। एक बार लिखना पड़ेगा, एक बार खुद पढ़ोगे, एक बार उससे किताब से कंसीडर करोगे, कितना मेहनत तो पहले ही हो गई, और फिर उसके बाद एक एक पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को जोर से पढ़ो जो याद नहीं हो रहा, तो सुनने भी अभी आएगा। फिर भी याद नहीं होता तो उसके सामने कोई सिंबल बनाओ, ये सिंबॉलिक कंसंट्रेशन कहलाता। आपने स्टार बना दिया, ये पूरा पैराग्राफ स्टार का जैसे ही ध्यान आएगा पूरा पैराग्राफ सामने आ जाएगा। फिर भी याद नहीं होता तो कहता हूं कि उसको उतने पैराग्राफ को एक कागज पर लिख करके सामने टेबल पर रख लो, रोज दिन भर में एक बार उसको देखना भर है क्या लिखा हुआ, या कि दीवार पर चस्पा कर लो, दरवाजे पर लगा लो। मैं बता रहा हूं आपको, हमारे साहब बताया करते थे हम लोगों को, इसलिए आपको बता रहा हूं, ये बहुत सामान्य सी चीज है। जैन धर्म के अनुसार तो सिर्फ इतना ही है कि हमारा ज्ञान हमारी विशुद्धि से हमारे अभ्यास से बढ़ता है, बाकी सब चीजें उसके आसपास की अपन ने जोड़ ली। आप निरंतर उसको देखेंगे, आप आश्चर्य करेंगे कि जब आप एग्जाम देने, मैंने ये प्रयोग किया है, मेरे से एसिटिलीन का फॉर्मूला याद नहीं होता था, CH3CH और फिर क्लोरोफॉर्म का और ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तब यही प्रक्रिया आजमाई कि बस उस फॉर्मूला को लिख लिया, चस्पा कर लिया, रोज आते थे दरवाजा खोलने से पहले पढ़ा और बैठ गया अपना स्टडी करने, बाकी कोई कंसंट्रेशन नहीं उस पर, वो है। और जब जैसे ही आया तो फौरन दरवाजे पर लगा हुआ स्लिप याद आ गई और ज्यों कहते हैं लिख दिया, बाहर आके किसी ने कहा क्या लिखा, लिख दिया वो जो वहां लिखा था यहां लिखा, कुछ नहीं किया मैंने, कोई प्रयत्न किया, इतना भीतर अपने अंदर दृश्य काव्य कहलाता है, ये एक श्रव्य काव्य होता है जिसको हम सुन करके, टेलीविजन इसलिए हमारे ऊपर ज्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि दिखता भी है और बोलना दोनों चीजें एक साथ अटैक हो रहा है, दृश्य काव्य भी और श्रव्य काव्य भी। और अगर हम इस तरह से देखने का अपना स्टडी के समय और ये बना लें कि हम सिर्फ उसको देखेंगे, पढ़ना भी नहीं, सिर्फ देखते रहिए उसको 5 मिनट और बस आपके अंदर इंप्रेशन बन जाएगा, क्षयोपशम आपका जागृत हो जाएगा। ऐसे और भी ढंग हैं भैया, इस तरह से बच्चों को अपना कंसंट्रेशन करना चाहिए। और जो लोग ध्यान करते हैं उनको इस तरह से मंत्र इत्यादि का ऐसे ही अभ्यास करना चाहिए, दोनों ही चीजें हर एक काम में। मुझे आश्चर्य होता है कि खाना बनाते समय किसी का हाथ नहीं चलता, कितना कंसंट्रेशन, नहीं रुपए गिनते समय कितना कंसंट्रेशन, 5 वाला रुपए 100 वाले में नहीं जाता कभी, वो 5 में ही रह गए। अरे कभी भी खाना खाते समय ऐसा नहीं खाते, कभी ऐसे ही खाते हैं, कितना कंसंट्रेशन इन सब चीजों में, तो कितनी जल्दी, क्योंकि अभ्यास है ना भैया, इंटरेस्ट है, अभ्यास है, वही इंटरेस्ट और वही अभ्यास अगर जो है इन चीज में हो जाए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बच्चों को जो है। और डिकरेज नहीं करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। ये फादर मदर को कह रहा हूं। अगर वे बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं तो कभी भी ये नहीं कहें उनके मुंह पर या चार लोगों के बीच में कि ये तो पढ़ते ही नहीं है, इसको तो खेलने खेलने से फुर्सत नहीं है, ऐसा ना कहें प्लीज। साइकोलॉजिकली उसके भीतर संक्लेश होता है, छोटा सा भी है मान लीजिएगा फिर भी वो कहेगा नहीं, लेकिन उसके भीतर संक्लेश होता, और जैसे ही संक्लेश होता है ज्ञान ढकना शुरू होता है। उसके भीतर भय पैदा कर देते हैं अपन, उस भय से भी उसका ज्ञान ढकता है। उसको तो हमेशा एनकरेज करना चाहिए, बहुत होशियार है, पढ़ेगा, उसको याद होगा, जाओ मंदिर में जाकर के पुस्तक रख करके आओ, शास्त्र भेंट करके आओ, किसी को चाहिए हो उसको शास्त्र दे करके दो, तुम नहीं पढ़ते दूसरे को किताब दो। दान देने से ज्ञान बढ़ता, ज्ञान दान देंगे अपना ज्ञान बढ़ेगा। इस तरह से ये सारी चीजें आगम में लिखी हुई हैं, इनका आलंबन लें तो हो सकता है छोटे बच्चों ने हिम्मत करके उसने प्रश्न तो पूछ दिया।
मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। से करुणा स्रोत बगे दीन दुखी जीवों पर मेरे, उसे करुणा स्रोत बगे रगे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, बने
आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।